नमो अरहंकारी नमो सिद्धारं नमो आयरियारं नमो उगच्छायारं नमो रोए तस्कापूरं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमोकरी मंगलं कुंत कुंतात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम सदानं सर्व धर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं दीन भुवन में सार दीत राग दीत्यान का शिव शरूप शिव कार नमः उठे उठ तो हम लोग निरीक्षा तत्व पर चर्चा कर चुके हैं और आज से हम मोक्ष तत्व की चर्चा शुरू कर रहे हैं। अभी तक किसी को भी कोई क्वेश्चन?
एक अनुभव जी, मैं सबको पूछ लेती हूँ कि सबको सुनाई देता है। मैंने अपना वॉल्यूम तो क्वाइट हाई किया है।
मैंने भी किया लेकिन बहुत फेड आता है, बहुत धीमो वजह से।
ओके ओके, अभी आ रहे हैं आप लोगों को थोड़ा ठीक आवाज?
और हो सके तो अच्छा है।
okay,
और फोन आपके पास?
हेलो,
यस,
हाँ ठीक है, आई थिंक अभी आएगा, ठीक आने लगेगा, दो सेकंड। हाँ, तो हम लोगों ने संवर निर्जरा तत्व पर डिस्कशन कर लिया है और अब हम मोक्ष तत्व पर चर्चा शुरू करने वाले थे, राइट? किसी को अभी तक कोई भी क्वेश्चन?
किसी को है क्वेश्चन? नहीं, कोई नहीं बोलता है।
तो हम लोग मोक्ष तत्व पर अब चर्चा शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट निर्जरा तत्व में ये देखा था कि तप बनते विधि झरन निर्जरा ताही सदा आचरिए। ये जो निर्जरा है ये तप बल से मतलब तपन से, प्रतपन से, तपस्या करने से, योग करने से, इससे कर्मों की निर्जरा होती है, ताही सदा आचरिए। और वो तप क्या होता है? इच्छा का निरोध, वो तप है। वो बाहर में ऐसा दिखता है कि वो एक जगह कोई खड़ा है या कोई बहुत अजीब से आसन में खड़े हुए हैं, बट बेसिकली तप इज नथिंग बट इच्छा का निरोध करना, मतलब इच्छाओं को उत्पन्न ही नहीं होने देना, और जो यदा कदा उत्पन्न हो जाए तो उनकी पूर्ति नहीं करना, उनको जीतना कि मुझे नहीं करना है, ये नहीं चाहिए, ये तप कहलाता है। ऐसे तप को सदा ही आचरना चाहिए, आदर देना चाहिए, ठीक है। अब मोक्ष का शुरू हो रहा है। सकल कर्म से रहित अवस्था सो शिव स्थिर सुखकारी। सकल कर्म ते, सकल मीन सारे, कर्म मीन जो कारणार्थ वर्गणाएं हैं, जो पुद्गल स्कंद हैं, जो कि कर्म रूप परिणमित हुए हैं जीव के साथ एक क्षेत्रावकार संबंध को लेकर, वो कर्म। तो सारे ही कर्म जो जीव से एक क्षेत्रावगाह रूप परिणमित हुए थे, उनसे रहित अवस्था मतलब उनका कर्म रूप से आत्मा से चला जाना, अब वो कर्म नहीं बचना, इसको बोलते हैं शिव। तो शिव मीन्स ये ही मोक्ष है। और ये कैसा है? स्थिर है, मतलब हमेशा रहने वाला है। और कैसा है?
अनुभव जी, एक मिनट, मैं सबको बोल दूं, ये अभी तीजी ढाल की दसवीं गाथा चलती है, अगर कोई किसी को नहीं।
कितने में ढाल की थी?
त्रीजी ढाल ने दसवीं गाथा हमें शुरू थी।
अच्छा अच्छा, थैंक यू।
तीसरी ढाल की दसवीं गाथा, इसकी पहली लाइन है, सकल कर्मते रहित अवस्था, सारे ही कर्मों से रहित, मतलब जितने भी कर्म थे उनका कर्म रूप से आत्मा से चले जाना। देखिए, पंचासी का संग्रह में बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, वहां पर कुनकुन आचार्य थे, ये थोड़ा विषय थोड़ा सूक्ष्मता से सुनिएगा, बहुत लेजिटिमेट क्वेश्चन आचार्य कुनकुन देव ने पंचासी का संग्रह ग्रंथ पर अराउंड 58-59 गाथा के बाद से उन्होंने जीव द्रव्य के कर्तृत्व गुण का व्याख्यान शुरू किया, कर्तृत्व और भोक्तृत्व गुण, ठीक है, मतलब जीव करता है और जीव भोगता है, राइट?
हाँ।
हेलो,
हाँ,
आप सबने आत्मसिद्धि शास्त्र भी पढ़ा होगा श्री मधुराचार्य जी का, तो उन्होंने 6 मूल प्रश्न उठाए हैं।
हाँ।
कि आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा करता है, आत्मा भोगता है, मोक्ष है और मोक्ष का उपाय है,
बराबर,
राइट?
हाँ।
बराबर, ये 6 शंकाएं
हैं।
तो इसमें जो तीसरी और चौथी नंबर की शंका है कि आत्मा करता है और आत्मा भोगता है, राइट, तो इसका वर्णन आचार्य कुनकुन देव पंचास्तिकाएं संग्रह ग्रंथ में कर रहे थे। तो उन्होंने क्या बोला स्टार्टिंग में, उन्होंने बोला कि जो जीव है वो कर्म को करता है और जो कर्म है वो जीव को फल देता है, ठीक है?
दोबारा बोलिए, दोबारा। जीव,
जीव कर्म को करता है और कर्म जीव को फल देता है, ठीक है? स्टार्टिंग उन्होंने वहां से करी।
हाँ।
और स्टार्टिंग में उन्होंने फिर स्पष्टीकरण किया कि नहीं, जीव अपने मोहराद्वेष के परिणाम को करता है और कर्म अपने परिणामों को करता है। तो जीव कर्म को करता है ये कथन व्यवहार का है, जीव तो अपने षटकारक से अपने परिणामों को करता है और कर्म अपने षटकारक से अपने परिणाम को करता है। जीव कर्म को नहीं करता, कर्म जीव को नहीं करता, ठीक है?
हाँ।
किसी को कोई दिक्कत
नहीं?
उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से इसको पूरा 6 कारक लगाकर एक्सप्लेन किया कि देखो, कर्म के पास कर्म का कार्य करने के लिए कर्म स्वयं है और जीव के पास जीव का कार्य करने के लिए जीव स्वयं है। यदि जीव कर्म को करेगा, बराबर, तो जीव कर्म को करेगा तो जीव का काम कौन करेगा,
बराबर?
तो यदि जीव को कर्म का कर्तृत्व होगा तो कर्म को भी जीव का कर्ता मानना पड़ेगा, लेकिन ऐसा लोक में दिखता नहीं है, इसलिए कर्म कर्म को करता है, जीव जीव को करता है। और आचार्य देव ने बहुत षटकारकों से उसकी सिद्धि कर दी कि कर्म स्वयं कर्ता होकर स्वयं के करण से, स्वयं कर्म अपादान संप्रदान अधिकरण, ये सब स्वयं है। ऐसे ही जीव अपने भावों का कर्ता, कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण स्वयं है, ठीक है? ये वाली बात वहां पर हो गई। तो अगली ही गाथा में कुनकुन आचार्य देव ने तुरंत फिर खुद ही प्रश्न किया कि जब जीव स्वतंत्र तरीके से अपने षटकारकों से स्वयं को करता है और जब कर्म स्वयं अपने षटकारकों से खुद को करता है, तो फिर जब जीव ने जीव को किया और कर्म ने कर्म को किया, तो फिर कर्म जीव से क्यों बंधते हैं और जीव उसके फल को क्यों भोगता है? जो गलती जीव ने करी ही नहीं, उसको उसकी सजा क्यों मिलती है? क्वेश्चन समझ में आया कि एक
हाँ।
जगह तो आचार्य देव कह रहे हैं कि वास्तव में जीव जीव को करता है, कर्म कर्म को करता है। अब आप अपने घर में काम करो, मैं आप अपने घर में काम करूं, तो हम दोनों ने एक दूसरे के घर में तो काम नहीं किया, सो वी डू नॉट ओ एनीथिंग टू ईच अदर, ना मुझे आपकी कुछ लेना देना है ना आपको मुझसे कुछ लेना देना है, राइट? करेक्ट। तो फिर जब कर्म को मैंने किया नहीं और कर्म ने मुझे कुछ किया नहीं, उसने अपना काम किया, मैंने अपना काम किया, तो फिर मुझे कर्म क्यों बंधे और मैं कर्मों के फल को क्यों भोगू? क्वेश्चन समझ में आया? राइट। तो अब इसका आंसर आगे कुंतल आचार्य ने दिया जो अभी रेलेवेंट है हमारे मोक्ष तत्व की चर्चा में, ठीक है। तो अब देखिए आचार्य देव ने जितने अच्छे से क्वेश्चन उठाया उसको फिर उन्होंने चार गाथाओं में बाद में कंक्लूड किया, ठीक है। तो अब हम आंसर्स लाइंस उसको समझेंगे। क्वेश्चन ये है कि जब जीव अपने षटकारकों से अपने परिणाम को करता है और कर्म अपने षटकारकों से अपने परिणाम को करता है, तो जीव को कर्म क्यों बांधते हैं और जीव क्यों कर्म के फल को भोगता है? तो दो पार्ट है। पहला पार्ट, जीव कर्म को बांधता क्यों है जब वो अपना काम खुद करता है, ये पहला क्वेश्चन। और सेकेंड, जब जीव ने अपराध किया ही नहीं तो फिर उसकी सजा उसके फल को क्यों भोगता है, ये सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो पहले पार्ट में तो आचार्य कुंकुन देव ने सीधे सीधे आंसर नहीं दिया, वो सीधे लेकर गए अपने शिष्य को। उन्होंने बोला कि चलो अभी इसकी बात तो एक साइड रखते हैं, तुम तो ये बताओ तुमने पूरा विश्व देखा है, पूरा विश्व यानी पूरा तीन लोक है पूरा, ये क्या देखा है तुमने? उस तीन लोक के बारे में तुम्हें एक फैक्ट बताता हूँ। तो आचार्य देव ने अगली गाथा में सिर्फ एक फैक्ट दिया, उन्होंने ये बोला कि पूरा का पूरा तीन लोक, ये पूरा का पूरा लोक, इसमें हर जगह एवरीवेयर पुद्गल स्कंद पड़े हुए हैं, हर जगह ये पुद्गल से लबालब भरा हुआ है, कंप्लीटली फिल्ड विद पुद्गल द्रव्य, ठीक है,
बराबर,
हेलो, ठीक है। पूरा का पूरा विश्व, इसमें हर जगह एवरीवेयर पुद्गल स्कंद पड़े हुए हैं, ठीक है। और उन्होंने एक और उसमें ट्विस्ट डाला, एक और फैक्ट दिया, कैसे है ये पुद्गल स्कंद, ये पुद्गल वर्गणाएं कैसी है, कि इसमें ताकत है कि ये पुद्गल वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित होने की शक्ति रखती है, मींस ये रॉ मटेरियल है कर्म बन जाने का, ठीक है। हेलो,
हाँ बराबर।
पूरी दुनिया में, पूरी की पूरी दुनिया में जहां भी आप जाओगे वहां पर बिना आपके लाए हुए पहले से ही पुद्गल स्कंद है, और वो ऐसे वैसे पुद्गल स्कंद नहीं है, उन पुद्गल स्कंद में कर्म रूप परिणमित होने की शक्ति है। जैसे यू वेंट आउट इन द मार्केट, तो मार्केट में हर जगह डस्ट पार्टिकल्स है, लेट्स से इट्स इंडियन मार्केट, ओके, आपके यहाँ शायद डस्ट नहीं होती है, यहाँ पर यू वेंट आउट एंड एवरीवेयर देयर आर डस्ट पार्टिकल्स, राइट, एवरीवेयर, हेलो। और वो डस्ट पार्टिकल्स कैसे हैं? उनमें आपकी बॉडी का मैल बनने की ताकत है, मतलब दिल गेट स्टिक टू योर बॉडी, दिल टर्न इनटू, यू नो, आपकी बॉडी की मलिनता में वो इंक्रीमेंट कर देंगे, राइट। तो वो धूल जो है वो मैल नहीं है, वो तो धूल है, दैट इज डस्ट, वो मैल नहीं है, बट यस उसमें ताकत है कि वो आपकी बॉडी के पास यदि चली जाए और आपकी स्किन में रुक जाए तो वो मैल बन जाएगी, करेक्ट, ठीक है, एवरीबडी फाइन विद दिस? क्या फैक्ट है? फैक्ट ये है कि इस पूरे विश्व में पुद्गल स्कंद लबालब भरे हुए, कर्म नहीं भरे हुए हैं, कर्म नहीं है पूरे विश्व में, कर्म बनने लायक, जिनमें शक्ति है कि वो कर्म बन सकते हैं, ऐसे पुद्गल स्कंद पूरे विश्व में भरे हुए हैं, वो जीव के द्वारा बिना लाए उसके पहले से ही हमेशा से वहां पर है, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट
अनुभव जी,
अगली गाथा में हाँ
मैंने आज पहली फेरे नोटिस किया कि पुद्गल आप बोलते हैं कि पुद्गल में हमेशा पुद्गल वो वर्गणा आती है, मगर वर्गणा का आई डिड नॉट वैसा क्लिक नहीं हुआ कि वो स्कंद, क्योंकि पुद्गल का वर्ग वो मैं हमेशा सोचती थी कि इंडिविजुअल पुद्गल होएंगे, मगर यहाँ आपने बोला कि पुद्गल स्कंद है।
नहीं नहीं, वो वर्गणा स्कंद होती है, वर्गणा स्कंद
वर्गणा, हाँ नहीं वो मैं वही बता के फर्स्ट टाइम इट हिट मी के वर्गणा इज स्कंद। आप पुद्गल स्कंद बोलते थे तो मैं पुद्गल वर्गणा, फिर आई कनेक्टेड द टू, क्योंकि अगर
पुद्गल वर्गणा है वो स्कंद रूप में ही रहती है
तो यहाँ स्कंद, क्योंकि इतने इतने सालों तक इट नेवर हिट मी के ये स्कंद है।
तो जो ये पूरे, क्योंकि पूरे लोक में जो अकेली एक सिंगल परमाणु होता है ना, उस परमाणु में शक्ति नहीं होती कि वो कर्म रूप परिणमित हो जाए, वो हमेशा ग्रुप में अटैक करते हैं, तो वर्गणाएं होती है, वो वर्गणाएं स्कंद रूप होती है।
ओ, तो अकेले में नहीं शक्ति होती है कर्म रूप परमाणु
में? अकेले जो अकेला जो परमाणु है उसमें स्कंद रूप होने की शक्ति है, पहले वो स्कंद बनेगा, वो स्कंद बनेगा तब वो वर्गणा, तब वो एज अ ग्रुप में वो लोग अटैक कर पाएंगे।
अच्छा, ओ
वो भी अनंत आनंद चाहिए ना।
एक ऐसे अकेले सिंगल कोई परमाणु नहीं आता आत्मा से बनने के लिए, पूरे ग्रुप में आते हैं।
फिर से बोलिए प्लीज। पहले
पहले जो अकेली परमाणु है ना, परमाणु में स्निग्ध रुक्षत्व शक्ति होती है, राइट, मतलब उसमें चिकनाई होती है और रूखापन होता है। तो चिकनाई के साथ अब दो पुद्गल परमाणुओं के बीच में उनके क्या बोलते हैं,
दो चार से मिलेंगे,
दो का डिफरेंस होना चाहिए उनके बीच, तो प्लस टू या माइनस टू रहेगा, तो जो छोटा वाला है वो बड़े वाले के साथ अटैच हो जाएगा। जैसे कि मेरे पास मेरे पास मेरी पर्याय के, मेरी स्पर्श गुण की पर्याय के अविभागी प्रतिच्छेद है 9, ठीक है, मैं एक पुद्गल परमाणु हूँ, और मेरे पास एक दूसरा पुद्गल परमाणु आया है, उसके पास उसकी स्पर्श गुण की पर्याय के अविभागी प्रतिच्छेद 11, तो 11 माइनस 9 दो का डिफरेंस है, तो 9 वाला 11 वाले के साथ जुड़कर 11 वाला बन जाएगा, छोटा वाला बड़े के साथ जुड़कर बड़ा वाला बन जाता है, ठीक है, वो एकदम एक दूसरे में मिल जाते हैं। जैसे कि आप वॉशरूम में जाएंगे तो वॉशरूम में फ्लोर में थोड़ा सा पानी होगा, राइट, तो पानी की एक बूंद यहाँ होगी, दूसरी बूंद धीरे धीरे उसके पास आ रही होगी, और वो दोनों बूंद मिलके बड़ी वाली बूंद बन जाते हैं,
बराबर,
राइट। सो फिर आप डिस्टिंग्विश नहीं कर, ऐसे ही दो पुद्गल परमाणु में से छोटा वाला मिलकर बड़े वाले में मिल जाता है, तो वो स्कंद बन जाता है। ओके, तो पहले सिंगल परमाणु स्कंद रूप होता है और वो फिर वर्गणाओं का रूप धारण करके कर्म वर्गणाएं, आहार वर्गणाएं, शब्द वर्गणाएं इनमें परिणमित होते हैं, ठीक है। तो क्या कि पहला फैक्ट तो ये कि पूरे विश्व में ये पुद्गल स्कंद है, कैसे है ये पुद्गल स्कंद, इनमें कर्म रूप परिणमित होने की शक्ति है। तो क्या ये कर्म है कि नहीं, कर्म नहीं है ये, मैल नहीं बना रही, ये धूल है, लेकिन इसमें मैल बनने की शक्ति है, ठीक है, फर्स्ट थिंग, ठीक है। तो मतलब इस पूरे विश्व में आप कहीं भी जाओगे वहां आपसे पहले ही ऐसी बहुत सारी सामग्री है जो कि मौजूद है, जो कर्म रूप है। आप लोग क्वेश्चन में भूलेगा, क्वेश्चन ये था कि आत्मा तो अपने षटकारकों से अपने आप को करता है और कर्म अपने षटकारक से कर्म को करते हैं, लेकिन आप बोलते हो कि आत्मा कर्म को बांधता है और कर्म आत्मा को बांधते हैं, तो ये आपकी बात तो झूठी हो गई, आत्मा ने कर्म को बांधा और कर्म आत्मा से बंध गए। तो आपकी ये वाली बात को आचार्य देव स्पष्ट कीजिए, आप एक स्टैंड लीजिए कि या तो कर्म करता है जीव या कर्म को नहीं करता, दोनों बातें नहीं चलेंगी कि आत्मा अपने भाव को करता है और उसको कर्म भी बनते हैं। तो आचार्य देव ने सबसे पहले एक फैक्ट रखा कि देखो जीव के बिना लाए ही पहले से ही इस जगत के चप्पे चप्पे पर हर जगह कर्म वर्णनाएं मौजूद है, मतलब पुद्गल स्कंद मौजूद है जिनमें कर्म रूप परिणमित होने की शक्ति है। ठीक है, अब उन्होंने नेक्स्ट चीज बोली, उन्होंने बोला लेट्स इमेजिन मैं एक पानी में कूद गया, ठीक है, समुद्र में, आई जस्ट मैं समुद्र के नीचे कूद गया, आई वेंट टू स्विम, मैं स्विमिंग करने के लिए गया, ठीक है। तो जब मैं स्विमिंग कर रहा हूँ तो मैं अपने अपने हाथों को हाथों को यूज कर रहा हूँ स्विमिंग के लिए, पानी को अलग करूंगा हाथों से तभी मैं तैर पाऊंगा, राइट, एंड पैरों से मैं पैडल भी करूंगा, राइट। तो मेरे पास दो क्वेश्चन है, मैं अपने हाथों के मूवमेंट को कर रहा हूँ या पानी को अलग कर रहा हूँ, व्हाट एम आई डूइंग, लाइक इमेजिन दैट आई एम स्विमिंग, मैं स्विमिंग कर रहा हूँ। देखो दो काम हो रहे हैं, एक तो पैर की पेडलिंग को भी भूल जाते, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन माई हैंड, मेरे हाथों की मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, उस समय क्या कर रहा हूँ, पानी को अलग कर रहा हूँ, लाइक पानी की वेव्स बन रही है, पानी दूर होता जा रहा है, तो आई एम एबल टू पैडल एंड आई एम एबल टू स्विम, राइट, ऐसे ही करते हैं स्विमिंग, करेक्ट। तो जब मैं स्विमिंग कर रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पानी को अलग कर रहा हूँ या अपने हाथों की मूवमेंट कर रहा हूँ,
हाथों की मूवमेंट करते हैं,
पानी को अलग नहीं कर रहा मैं,
नहीं उसी टाइम वो पानी मूव होता है,
पानी अपने आप होता है,
पानी अपने आप मूव होता है उसी टाइम,
नहीं, मेरा सिंपल क्वेश्चन, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम ट्राइंग टू स्विम हियर, राइट। तो मैं स्विमिंग के लिए गया और मैंने अपने हाथों की मूवमेंट पहले करूं कि मैं पानी को हटाऊं,
मूवमेंट कर,
आपकी मूवमेंट कर,
मैं क्या करूं, तो मैं मूवमेंट करूंगा तो पानी हट जाएगा,
यस
हट जाएगा, पक्का,
पक्का,
ठीक है। देखो जैसे मैं स्विमिंग करता हूं ना, मैं वैसे ही हाथ की मूवमेंट अभी आपके सामने कर रहा हूं, बताइएगा कितना पानी हटा, आई एम डूइंग इट, कितना हटा पानी,
पानी तो चाहिए ना,
क्यों पानी, अरे मैं तो मूवमेंट कर रहा हूँ तो पानी हटना चाहिए ना अपने आप,
अगर मूवमेंट कहाँ कर रहे हैं, वो हवा में कर रहे हैं तो हवा हटेगी,
एग्जैक्टली। तो ये वाली बात आचार्य कुनकुन देव ने अगली गाथा में कही, उन्होंने अब ये बोला कि जो जीव है ना, जीव अपने षटकारक से अपने हाथों को चलाता है, ठीक है, जीव अपने षटकारक से अपने हाथों को चलाने का करता है, अब हाथ की जगह जीव के मुहराग्विश के परिणाम, ठीक है, जीव स्वयं के षटकारक से स्वयं के परिणामों को करता है, और फैक्ट क्या है कि जहां पर जीव अपने हाथों को चला रहा है वहां पहले से ही बहुत सारा पानी है पुद्गल स्कंद का, हेलो, तो जैसे अभी मैं बिना पानी के हाथ चला रहा हूं तो पानी नहीं हिल रहा, क्यों नहीं हिल रहा, क्योंकि यहाँ पानी प्रेजेंट नहीं है, मतलब जब मैं पानी में भी हाथ चला रहा हूँ तब मैं पानी को नहीं चला रहा, मैं तो हाथ को चला रहा हूँ, पानी क्यों हिल रहा है, क्योंकि वो प्रेजेंट है वहां पर, मैंने पानी को थोड़ी कुछ किया है,
नहीं,
डू यू गेट द लॉजिक, लॉजिक, यदि हाथ हिलाने से पानी हिलता तो अभी यहाँ पर भी पानी हिलना था, लेकिन उसकी बेसिक कंडीशन ये है कि पानी तो होना चाहिए, इसका क्या मतलब हुआ कि पानी को हिलाने वाला हाथ नहीं है,
राइट,
अच्छा ठीक है, लेट्स फॉरगेट, मैं भी समुद्र में नहीं, आई एम नाउ, मैं एक ऑयल के बहुत बड़े पॉन्ड में कूद गया हूँ, ठीक है, तो अभी भी मैं स्विमिंग करना चाह रहा हूँ बट इट्स ऑयल का पॉन्ड, तो जैसे मैं पानी में स्विमिंग करता हूँ वैसे ही इजीली यहाँ पर स्विमिंग होगी कि ज्यादा एफर्ट लगेगा,
बहुत एफर्ट लगेगा,
बहुत एफर्ट लगे। क्यों? मैं तो बिल्कुल जैसे पानी को हटाता हूँ ना, वैसे ही हटाऊंगा ऑयल को भी,
क्योंकि घनता के डिफरेंस है ना।
एग्जैक्टली इसका क्या मतलब हुआ कि आपके हाथ से आप नहीं कर रहे हो, पानी अपने आप इजीली खुद हटता था तो आपको लगता था इजी है स्विम करना, तेल अपने आप नहीं हट रहा है इतनी इजीली तो आपको लग रहा है थोड़ा टफ है। मतलब इन बोथ द सिचुएशन पानी स्वयं को हटाता है अपने हिसाब से और तेल स्वयं को हटाता है अपने हिसाब से, और आपका कर्तृत्व आपके षटकारक में आपके हाथों को करना है, राइट? ऐसे ही जीव अपने षटकारक से अपने परिणाम को करता है, उसी समय वहां पहले से ही कर्म की धूल मौजूद है, तो वो अपने आप जब भी जीव हाथ चलाता है पानी में अपने आप लहरें बनने लगती है। ऐसे जब भी जीव परिणाम करता है तो बिना इसके किए, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी बहुत सारा कर्म स्कंद का पानी है, तो वो अपने आप कर्म रूप से जीव के साथ चिपकने लगता है। ना तो जीव उसको चिपकाने जाता है और ना ही उसका कुछ चिपकाने का मन है, वो तो जड़ है, लेकिन उन दोनों के बीच में क्योंकि वो एक जगह पर है तो अपने आप ऐसा बनाव बनता है कि वो इनसे अट्रैक्ट होता जाता है। बात समझ में आई?
हाँ। वो मन वचन काया का परिस्पंदन होने से होता है ना कंपन?
हाँ, परिस्पंदन मन वचन काया का होगा वो बाद में। मन वचन काया नहीं, आत्मा के प्रदेश, आत्मा के प्रदेशों में जो कंपन होगा वो किस कारण होगा? मन वचन काया जो कि परद्रव्य है उनके निमित्त से, उसको योग बोलते हैं। बाहर शरीर इस काया, उसके अंदर एक अष्टदल के आकार का एक मन है और मुंह में वचन है, राइट? ये तीनों पुद्गल द्रव्य शरीर की पर्याय है। इन तीनों के निमित्त से इनमें, इनके साथ जो आत्मा इसी क्षेत्र में रह रहा है, इसके प्रदेशों में कंपन होता है, इस कंपन को बोलते हैं योग। मन वचन काया को योग नहीं बोलते, उनको व्यवहार से योग कहा जाता है। योग मतलब आत्मा में कंपन होना, वो योग है, ठीक है? आत्मा में जो स्पंदन होता है वो योग है। इसके कारण क्या होता है, जो आजू बाजू के कर्म है वो आत्मा की तरफ अपने आप, जैसे कि आपके हाथों में स्पंदन हुआ तो आजू बाजू का पानी अपने आप इधर उधर होकर चला गया या आपके ऊपर और आने लगा, ऐसे ही आत्मा ने इतने बड़े पुद्गल स्कंदों के पूल में अपने आप को ऐसा जाने दिया और वो गया, तो वहां उसने मोहराग द्वेष के परिणाम किए, स्पंदन किया अपने प्रदेशों में, तो वहां पर जो ऑलरेडी स्कंद मौजूद थे वो उसे देखकर अपने आप कर्म रूप परिणमित होती है।
अनुभव जी,
बात समझ में? हाँ।
अनुभव जी, मैंने आपको पहले आई थिंक पूछा था, वो याद नहीं है मुझे, मगर वो जब स्पंदन कहते हैं कर्मों के, जीव के प्रदेश का स्पंदन, इज इट द सेम एज वो जीव का जो वो प्रदेशों का रोटेशन कहते हैं, वो ही ना सेम?
हाँ, वो ही है।
So it rotates faster, ऐसा है ना kind of, because ये इसकी वो faster या slower?
करेक्ट करेक्ट। तो जहाँ पर जितना ज्यादा आश्रम होगा उतना ज्यादा प्रदेशों का कंपन ज्यादा है, रोटेशन ये वो ही है, ठीक है? आत्मा के प्रदेश घूमते रहते हैं, वो उनका हलन चलन है, वो ही उनकी योग की क्रिया है। सिद्ध भगवान में वो वाली क्रिया निश्चल हो जाती है, वहाँ वो बंद हो जाता है सब काम, ठीक है? वो 14वें गुण स्थान के अंत में योग का निरोध कर देते हैं। क्या सिद्ध के आचार्य देव ने, उन्होंने पहली बात तो बोली कि देखो जो मैंने बोला था कर्म कर्म को करते हैं और जीव जीव को करता है, वो एकदम सही बात है, 100% की बात है, राइट? जैसे कि स्विमिंग के टाइम आप सिर्फ अपने हाथ और पैर को हिलाते हो और बाकी का काम पानी खुद देखता है, राइट? यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग टू वाटर,
राइट?
अनुभव जी,
लेट्स सी। हाँ जी,
अच्छा, आपने जैसे बताया कि ये हाथ की मूवमेंट पानी में कर रहे हैं और पानी अपने आप मूव हो रहा है, तो वो दोनों का इंडिपेंडेंट काम चल रहा है, राइट? तो उसमें वो निमित नैमित्तिक संबंध कहा जाता है कि
यस, वो निमित नैमित्तिक संबंध है क्योंकि एक जगह पर रह रहे हैं ना वो दोनों. यदि वो अलग अलग जगह पर होते तो निमित नैमित्तिक संबंध भी नहीं बनते. जैसे मैं अभी हाथ हिला रहा हूँ तो पानी हिल रहा है क्या? नहीं. क्यों? क्योंकि क्षेत्र में भी नहीं है एक. निमित्त नैमित्तिक संबंध के लिए वहाँ क्षेत्र भी होना चाहिए, थोड़ा तो आस पास रहे या कुछ तो रिलेशन रहे. देखिए आपने बच्चों को देखा होगा, जो बच्चे होते हैं, हम लोग जैसे बचपन में खेलते थे तो हम लोग देखते थे पापा लोग बाइक चला रहे हैं, राइट? तो बाइक को कैसे चलाते थे? वो अपने हाथों को ऐसे करके, फिर यू नो एक्सीलेटर के लिए हाथ की कलाई जो होती है उसको, रिस्ट को थोड़ा ऊपर करते थे घुमाकर, राइट? तो एक बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे होते तो वो भी जस्ट दे डू द एक्शन ऑफ राइडिंग द मोटरसाइकिल, राइट? दे डू दैट, उतने ही करते हैं वो. या फिर कार की स्टीयरिंग को बस वो अपने हाथ को राउंड करके ऐसे घुमाते रहते हैं चलते चलते, एंड देन दे मेक द साउंड, दे जस्ट मेक द साउंड, राइट? ठीक है. अब मुझे बताइए, जो बच्चा मोटरसाइकिल या कार को चलाने का एक्सप्रेशन कर रहा है और उसके पापा एक्चुअल में मोटरसाइकिल और कार चला रहे हैं, ये बताओ व्हाट डिफरेंट हिज फादर इज डूइंग. उनके पापा जो बच्चा कर रहे हैं उससे अलग क्या करते हैं कार के अंदर? वो नया क्या करते हैं उसके पापा जो बच्चा करता है?
अपनी बॉडी का स्पीड देते हैं, लाइक
पापा एक्चुअली में कर रहे हैं,
पैदल दबाते हैं गैस पर.
अरे वो बच्चा भी तो वो सारे काम, आप ये बताइए, तो पापा जब स्टीयरिंग चलाते तो उनके हाथ भी वैसे नहीं होते जैसे बच्चे के होते हैं?
नहीं, हाथ ही लगा होता है.
क्या होता है? हेलो,
फिर से पूछिए.
अरे मैं पूछ रहा हूँ, जो बच्चा भी खेल रहा है ग्राउंड पर अपने एक्शन के साथ और उसके पापा एक्चुअल उस कार में बैठे हुए हैं, पापा और उस बच्चे के बॉडीली रिएक्ट, जो बॉडी से वो दोनों कर रहे हैं, उन दोनों में डिफरेंस क्या है? बच्चा और पापा में डिफरेंस क्या है? वो नया क्या कर रहे हैं पापा?
पापा कर रहे हैं उससे तो गाड़ी कर रही है, क्योंकि स्टीयरिंग व्हील वो जब,
तो इतना ही डिफरेंस है ना कि जब पापा करते हैं तो उनके हाथ के अंदर एक्चुअल में स्टीयरिंग होती है और बच्चा करता है तो हवा होती है बस. करे. बाकी एक्शन तो पापा का भी वही है, बच्चे का भी वही है.
और नॉट ओनली स्टीयरिंग व्हील बट गैस भी तो चाहिए ना.
हाँ.
तो चलेगी कार तो.
अरे वो मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि बच्चा बाहर ग्राउंड में वो एक्शन कर रहा है और पापा कार के अंदर, तो पापा उस एक्शन से ज्यादा क्या करेंगे कार में, बताओ? उसके अलावा वो और क्या कर सकते हैं? व्हाट एल्स कैन यू डू?
सेम ही कर रहे हैं.
सेम है ना, उनका दोनों में कोई अंतर नहीं है दोनों को करने में. बट पापा इज गॉट लकी कि जहाँ वो एक्शन कर रहे हैं वहाँ उसके नीचे वहाँ कार भी आ गई है. तो राइट, तो वो जब हाथ ऐसे घुमाते तो उनके हाथ के अंदर एक्शन में स्टीयरिंग है, बच्चे के हाथ में स्टीयरिंग नहीं है, लेकिन पापा का कर्तृत्व उस हाथ की मूवमेंट से बाहर उससे ज्यादा कुछ स्पेशल वो भी नहीं कर सकते क्योंकि उनके षटकारक में उतनी ही लिमिटेशन है. बाकी का काम कार करेगी.
बराबर, एकदम
राइट.
तो आप किसी भी चीज को करने के लिए जाए, आपकी लिमिटेशन, जैसे कि सॉरी, आप चपाती को बना रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे वो भी एक्शन करते कि मम्मी ऐसे ऐसे बेलन से बेलते हैं, राइट? तो बच्चा एक्शन करेगा ऐसे ऐसे बेलते हैं और आप एक्चुअल बेलते हो, व्हाट इज द डिफरेंट इन दैट एक्शन? कोई डिफरेंस नहीं है, तो सेम, बट उसके नीचे बेलन आ गया एक्चुअली जब आप कर रहे हो. राइट. तो हम सिर्फ अपनी सीमा में, जो हमारे पास सीमा में काम है, हम वो करते हैं. अब उसी क्षेत्र में कोई दूसरा द्रव्य आ जाए तो वो निमित्त नैमित्तिक संबंध से आरोप आ जाता है कि देखो मैंने चपाती को बेला, या मैंने कार को ड्राइव किया, बाकी जब तक मैं विदाउट कार अपने घर में जब रिहर्सल कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था, तब भी मैं वही कर रहा था जो कार के अंदर कर रहा हूँ, बट तब नहीं कह सकते थे कि मैं कार चला रहा हूँ क्योंकि कार थी ही नहीं।
बराबर।
सिमिलरली जीव अपने राजद्वेष के परिणाम को ही करना जानता है, उसकी लिमिटेशन वही है, वो स्टीयरिंग को हाथ के मूवमेंट के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। सिमिलरली जीव मोह राग द्वेष या वीतराग भाव को करने के अलावा कुछ नहीं जानता, लेकिन जहां पर वो ये मोह राग द्वेष के भाव कर रहा है वहां ऑलरेडी पहले से ही बिना किसी के बुलाए पहले से ही पुद्गल स्कंद रखे हुए हैं, और वो चीज के मोह राग द्वेष को देखते हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी कर्म की गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो ये ऐसा लगता है कि ये जीव कार को ड्राइव कर रहा है या इस जीव ने कर्म को बांधा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, जीव तो बस वो अपना स्टीयरिंग वाला एक्शन ही कर रहा है। तो उस जीव को स्वतंत्रतया उसके स्टीयरिंग वाले एक्शन से या मोह राग द्वेष से देखना वो निश्चय की दृष्टि है कि स्वतंत्रतया अपना परिणाम अपने षटकारक से करता है, और जीव को संयोगों की अपेक्षा कर्म को बांधते या कार को चलाते देखना ये व्यवहार निमित्त नैमित्त की अपेक्षा है कि जीव कर्म को बांधता है। दोनों में कोई गड़बड़ नहीं है, जीव कर्म को बांधता है लेकिन निमित्त मात्र की अपेक्षा, जीव कर्म को नहीं बांधता अपने परिणाम को करता है स्वभाव मात्र की अपेक्षा।
बराबर।
आप लोग को कोई डाउट है इसमें? हम सिर्फ ये क्योंकि मोक्ष की चर्चा और इसमें बोलेंगे कि सारे कर्मों से रहित हो जाओ, तो पहले समझ तो ले कि कर्म और आत्मा का है क्या, पूरा केस क्या है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो फर्स्ट थिंग है, सबसे पहले तो जीव कर्म को बांधता है कि नहीं, यदि बांधता है तभी तो मोक्ष उनको छोड़ने की बात होगी, बांधता ही नहीं होगा तो फिर छोड़ने की क्या बात है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आचार्य कुंकुम देव से पूछा कि भैया क्या करता है, तो उन्होंने बोला था कि हाँ जीव कर्म को करता है और कर्म को भोगता है। फिर वो अगली गाथा में तुरंत बोल गए थे कि नहीं नहीं जीव अपने षटकारक से अपने परिणाम को करता है और कर्म अपने षटकारक से अपने परिणाम को करता है। तो फिर हमने जेन्युइनली पूछा कि भैया आप एक बात बताइए कि वो करता है कि नहीं, यदि वो स्वयं के परिणाम को करता है तो एक दूसरे को क्यों वो बांधते और एक दूसरे को क्यों उदय में फल देते हैं। तो अब कुनकुन आचार्य देव बता रहे हैं कि देखो जीव तो अपना निश्चय से अपना ही परिणाम करेगा। आप कोई भी काम करोगे, आप देखो यू नो आप बंधे हुए हो, डू वॉट एवर, आप अपनी उंगलियों हाथ और पैर के मूवमेंट से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। इमेजिन करके देख लीजिए, आप कोई भी काम पिक करिए, आप किसी भी काम में आपकी लिमिटेशन है कि आप अपने हाथ पैर नाक कान ये सभी लगाकर वो काम करते हैं, विदाउट दैट यू कैन नॉट वर्क। कोई भी काम देख लीजिए आप, राइट, आपको कुछ भी उठाना है हाथ से तो आप अपने हाथ को, जैसे क्रेन होती है, क्रेन को आपने देखा है कैसे क्रेन पकड़ती है, तो क्रेन का एक ऑपरेटर होता है, वो ऑपरेटर उस क्रेन के व्हील को डायरेक्ट करता है, उसके पास वो उसका लीवर रहता है, राइट, वो वहां से उस चीज के पास जाता है और फिर वो उस क्लॉ को क्लोज करता है। अब क्लॉ को क्लोज किया तो वो वाली चीज यदि उस क्लॉ में पकड़ में आ गई तो ठीक है, नहीं तो वो वापस उसको ओपन करेगा और उस चीज के पास वापस ले जाएगा और फिर क्लोज करेगा, उसके पकड़ में आनी चाहिए। तो क्रेन में, क्रेन वाले का काम तो सिर्फ क्लॉ को बंद करना है। अब यदि चीज उसके अंदर आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो फिर खोलो और फिर उसको दूसरी जगह जाके बंद करो। तो क्रेन का कर्तृत्व, क्रेन क्या कर रही है, वो तो बस अपने आप को बंद करती है, उसके बीच में वो चीज फंस जाए तो वो उठा लेगी और वो उसको नहीं उठाएगी, वो अपने आप को ही उठाएगी, वो लीवर खुद को ही उठाएगा क्योंकि वो चीज उसके साथ फंसी हुई है तो वो भी उठ जाएगी, बट क्रेन तो अपने आप को उठा रही है। सिमिलरली आप जो कुछ भी, आपने एक स्पून उठाई तो आपने भी क्रेन जैसे सिर्फ अपनी क्लॉ को बंद किया है, अपनी उंगलियों को एक दूसरे से मिलाया है, बीच में चम्मच आ गई तो ठीक है वो भी उठ जाएगी, बट आपने चम्मच नहीं उठाई हुई है, आपने हाथ बस उठाया है अपना खुद का। समझ में आ रही है बात? जिस स्वतंत्रता है, ये हम रोज एक्सपीरियंस करते हैं, हमारी लिमिटेशंस हैं, हम इस बॉडी के बाहर हम कुछ भी नहीं कर पाते, जो कुछ भी करते हैं हम इस बॉडी के हिसाब से करते हैं, और ये तो बॉडी के हिसाब से कर रहे हैं, बॉडी का करना भी बहुत बड़ा एक गैम्बल है। जब तक बॉडी हेल्थी है, चल रही है, तब तक ही इससे कर रहे हैं, तभी तक इससे करने का भी मान है, तो इसलिए हम एक और स्टेप बाहर जाते हैं कि हम बॉडी से नहीं आत्मा के प्रदेशों से कर रहे हैं।
करेक्ट,
क्योंकि प्रदेश यदि वहां के नहीं करेंगे काम तो फिर वो बॉडी का पार्ट भी नहीं करेगा, पैरालाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये वाली बात आचार्य देव ने पहले बोली कि देखो आत्मा कर्म को नहीं, आत्मा अपने परिणाम को करता है,
काम,
वो अलग बात।
बॉडी से अभी आप बोला के बॉडी से करते हैं, वो तो एग्जांपल के हिसाब से ना, वैसे तो
एग्जांपल है, वो व्यवहार से बोला है, बहुत मोटे वाले उपचार से
एकदम,
सच में वहां से भी नहीं करते हैं समझाने के लिए।
बराबर बराबर,
ऐसे ही आत्मा मोह राग द्वेष से आगे कुछ भी नहीं कर सकता, जैसे हम लिमिटेड है ना बॉडी से कुछ भी करने के लिए, मैं बैठे बैठे सामने रखी हुई चीज को नहीं उठा सकता, मुझे उसके पास जाना पड़ेगा उसको उठाने के लिए, कि बॉडी को वहां तक ले जाना पड़ेगा। सिमिलरली आत्मा भी इनकेपेबल है मोह राग द्वेष के अलावा कुछ, या वितरक्त के अलावा, ज्ञान दर्शन के अलावा कुछ भी करने के लिए। ठीक है, लेकिन व्यवहार से, क्योंकि क्योंकि जब भी आत्मा मोह राग द्वेष करता है, जब भी मैं पानी के अंदर जाके हाथों को हिलाता हूँ तो पानी में मूवमेंट होता ही है अपने आप, मैं नहीं चाहता कि पानी नहीं हिले लेकिन होता ही है। सिमिलरली जब भी आत्मा मोह राग द्वेष करे तो पुद्गल वर्गनाएं आसपास की, पुद्गल स्कंद, वो कर्म रूप परिणमित होते ही है, वो उनका नेचर है, वो उनका काम है। ठीक है, तो इसलिए ये लगने लगता है कि आत्मा ने कर्म को बांधा और कर्म ने आत्मा को बांधा, दोनों तरीके से, लेकिन कर्म ने अपना काम किया और आत्मा ने अपना काम किया।
बराबर,
एक बहुत सिंपल सा आपको एग्जांपल दूंगा, हम लोग रात में क्यों नहीं खाते? Why do we not eat at night?
हम
होते हैं ना रात को,
क्या होता है रात को?
जीव हिंसा होती है क्योंकि सूक्ष्म जीवा जो है वो हम देख पाते हैं,
तो सूक्ष्म जीव दिन में नहीं होते क्या?
मगर रात के टाइम
सूर्य में नहीं होता है क्योंकि उसमें वो उसका नाम।
ओके 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 ओके, अब आप अपनी शब्दों पर लगे रहिएगा। ठीक है, अब देखिए क्या, रात को सुबह 5 बजे तक अंधेरा है, ठीक है, तो क्योंकि सूरज नहीं है तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति हो गई है, राइट? यही आप लोग कह रहे हो, राइट?
सूरज नहीं है
तो सारे जीवों की क्या हो जाती है, उत्पत्ति हो जाती है, राइट? ठीक है, अब 10 मिनट बाद यहाँ पर सनराइज हुआ, अभी छोटे छोटे जो जीवों की उत्पत्ति हो गई थी इनका क्या होगा?
नाश
हो जाएगा। तो ये बताओ सूरज 7वें नरक में जाएगा, 6वें नरक में जाएगा, किस नरक में जाएगा? इतनी सारी हिंसा उसने कर दी आते ही साथ, वेयर शुड द सन गो?
उसको लिए नरक नहीं बना है वो,
क्यों
क्या है वहीं,
मैं हिंसा करूँ तो मैं नरक में जाऊंगा और सूरज नहीं जाएगा,
वो नहीं जाएगा उसके लिए, वो नहीं, भगवान ने वो बनाया नहीं, हमारे लिए सब कुछ बनाया है।
अरे भगवान ने तो कुछ भी नहीं बनाया, ठीक है,
सब
पूछ रहा
रूल्स रेगुलेशन हमारे लिए,
जीव खुद ही
किलिंग एवरी मॉर्निंग सन राइज होता है और वो अपने साथ इतना बड़ा भयंकर तांडव लेकर आता है कि पूरी दुनिया के जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सब मर जाते और जैन लोग अब एकदम खुश हो जाते, चलो हम खा सकते हैं।
जब जैसे आपने बोला कि वो पानी, वो पानी हाथ हिलाओ और पानी अपने आप ही मूव होता है, यहाँ सूरज राइज होता है और ये जीव आयुष पूरा होता है तभी
अपने आप।
तो आप ये कह रहे हो कि सूरज ने इतने सारी जीवों को नहीं मारा?
हाँ
नहीं, लेकिन हम चौबियार करते हैं ना, इसलिए हम नहीं खाते।
नहीं मारा अपने वो उनका जीवों का आयुष तभी पूरा।
और ये कितना, और ये कितना मीनदी है ना कि हम क्या करते हैं, हम वेट करते हैं पूरी रात के, चलो कल सुबह सूरज आएगा इन सबको मार डालेगा और फिर हम खाना खा पाएंगे।
हम ऐसा सोचते
नहीं रहते
नहीं,
तो हमने कभी कल्पना भी नहीं किया है।
अरे लेकिन आपने अभी तो बोला था कि सूर्य होता है तो सब जीवों का,
ऐसे साइंस में भी बोलते हैं ना, है। तो चौबियार होता है तो कुछ करते हैं ना।
तो जितने हम देखो सूरज ने इतना वॉयलेंट काम किया, फिर भी हम सूरज को कितने प्यार से देख पाते, कितना अच्छा है सूरज, कितना नोबेल है, वातावरण में जीवों को उत्पन्न नहीं होने देता है। हम इतने अच्छे से कभी मॉस्किटो रेपेलेंट्स को नहीं देख पाते, हमें लगता है यार इससे तो मच्छर मर जाएंगे, तो यू नो मॉस्किटो रेपेलेंट से तो उससे तो हमें कैसा लगता है, नहीं नहीं हमको यूज नहीं करना चाहिए इससे तो मच्छर मर जाएंगे। लेकिन सूरज, सूरज इज गुड, सूरज से भी तो जीव मरते हैं, सूरज को भी स्विच ऑफ करो।
वो हम थोड़ा स्विच ऑफ कर सकते हैं,
नहीं तो नहीं, तो आप करते कि नहीं करते फिर आपका जीवन पर उपवास करते,
जीव
रात में जीव रहते और
जीव की खुद की उत्पत्ति ही नहीं होती है उस वक्त, क्योंकि एटमॉस्फेयर जैसे होता है उस वक्त।
अरे जो उत्पत्ति नहीं होती वो तो जाने दो, मैं तो बोल रहा हूँ 5 बजे जो उत्पन्न थे रात में वो तो मरेंगे ना जब सूरज आएगा, उसके बाद उत्पन्न नहीं होते वो अलग बात है,
वो तो पुद्गल है इसलिए होता है ना शायद।
नहीं वो तो जीव,
अरे जी कौन पुद्गल है,
थोड़ा पुद्गल वो
मगर वो गुरुजी कब कब मैंने एक दफा सुना था कि वो उदय है छोटी छोटी, जैसे ही सूरज निकलता है यू कैन सी दैट इट्स
डार्क। गुरुदेव ने भी बोला था लेक्चर में, रोज में
उदय होती है जो लकड़ी में होती है, वेरी वेरी डेलिकेट, एज सून एज सन कम्स आउट किरणों में वो सूख जाती है, मर जाती है,
जल जाती है, राइट
या
तो फिर उसके मर्डर का पाप सूरज को लगेगा कि नहीं लगेगा, दैट इज द क्वेश्चन।
वो तो गुरुदेव ने भी नहीं बताया था तो हमें कैसे,
तो यहाँ पर ये ही बता रहे हैं हम क्रियाओं में इतने मशगूल हो जाते हैं, हम निमित्त नैमित्तिक संबंध का मतलब नहीं समझ पाते हैं।
हाँ, निमित्त नैमित्तिक
सूरज जीवों को भले ही आपको बेशक लग रहा हो कि मार रहा है, लेकिन सूरज एक पुद्गल द्रव्य है, वो स्वयं जड़ है, राइट, उसका प्रकाश नाम की उसका प्रकाश यानी कि वर्ण, राइट, सूरज दिखता है वो पुद्गल स्कंद है बहुत बड़ा, राइट, और उसमें न मारने के परिणाम है न कुछ भी है। तो इतने जीवों की स्वतः मृत्यु होने पर भी सूरज को कोई दोष नहीं देता, राइट, क्योंकि हम इंडिपेंडेंटली देख पाते हैं कि सूरज थोड़ी मार रहा है, वो जब उत्पन्न हो रहे हैं तो ये अपने आप उसकी रोशनी को सहन नहीं कर पाते,
या उसकी आयु खत्म हो जाती है,
अपने इनके पास इतनी ताकत ही नहीं है, तो जैसे ही वो जन्म लेता है वैसे अपने आप जल जाते हैं। जैसे मैं अपनी स्किन को, मतलब मैं गैस के पास खड़ा हूँ, मैं आग के पास ले जाऊंगा, तो आग के पास यदि मेरी स्किन जाती है तो वो अपने आप बर्न होती है, राइट, उसका नेचर ही है कि यदि स्किन को आप आग के पास ले जाओगे तो वो बर्न होगी ही, लकड़ी को ले जाओगे तो वो अलग तरीके से बर्न होगी, लोहे को ले जाओगे तो बर्न नहीं होगा वो मेल्ट होगा, तो इन सब का खुद का नेचर है, आग नहीं कराती, यदि आग बर्न कराती तो वो लोहे को भी बर्न कराती, वो किसी लकड़ी को नहीं करती तो वो तो लोहे को मेल्ट करती है। सिमिलरली आत्मा कर्म को नहीं बांधता, ये निमित्त में आत्मा मोहरा द्वेष को करता है, और तब जैसे सूरज के उदय में जीव अपने आप मरण को प्राप्त होते हैं, ऐसे आत्मा की मोहर आक्रेश परिणाम में अपने आप पुद्गल स्कंद कर्म रूप को प्राप्त होती है। इनकी स्वतंत्रता से हमको देखना सीखना पड़ेगा, और जब हमको ये पता पड़ेगा तब हमको पता पड़ेगा कि हमारी दुश्मनी कर्म से है ही नहीं, क्योंकि कर्म तो हमको छुए ही नहीं। जैसे सूरज ने वो हिंसा करी ही नहीं जीवों की, सूरज का पूरा लेना देना उसकी रोशनी से है, ऐसे ही आत्मा का पूरा लेना देना उसके मोह राजवेश से है। अब हम मोह राजवेश को तो नहीं देखते, और हम सारे कर्मों को, हमने इतना बुरा कर दिया, ये हिंसा कर दी, वो कर दी, कितना पाप पड़ा होगा, कितने कर्म बंधे होंगे, इसकी टेंशन हमको है। बट वो रियलिटी में हमने किया ही नहीं, वहां से तो दूर दूर तक रिश्ता ही नहीं हमारा। जो हमने किया वो मोह राजवेश का परिणाम है। इसलिए हमारा पूरा अधिकार, अब गुरुदेव श्री की भाषा में, हमें राग से भेद ज्ञान करना है, राग से जुदा पाड़भूछे, राग से जुदा करना है। शरीर कर्म ये तो है ही नहीं कहानी में, ना इनकी कोई गलती है। बराबर ठीक है। जो मोक्ष की चर्चा चलेगी वो यहाँ कर्म मतलब अपने मोह राग द्वेष के भाव कर्म है। ठीक है। हेलो। देखिए एक मेरे पास दवाई की डिब्बी है मेडिसिनों के, और उसमें लिखा हुआ है कि आफ्टर वन ईयर इट विल एक्सपायर, मतलब इसका जो भी ये काम करती है वो काम नहीं करेगी। ठीक है। तो एक साल तक वो दवाई उस डिब्बी के अंदर रही, ठीक है, और मैं भूल गया उसको खाना। तो एक साल बाद मैंने उस डिब्बी को देखा तो उसके अंदर से दवाई उड़ जाएगी कि वही रखी रहेगी, कि दवाई की टेबलेट्स तो वहीं पर ही उस डिब्बी के अंदर ही, राइट। लेकिन अब वो दवाई बची क्या? अब तो एक साल हो गया, तो जो दवाई का इफेक्ट था वो तो अब चला गया ना।
परंतु वो हेलो
वापिस ये दवाई थी, इसमें लिखा था एक साल बाद ये यूजलेस हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी, करेक्ट। तो वो दवाई उस डिब्बी में रखी रही एक साल तक। मैं एक साल के बाद उस दवाई के पास गया तो अभी उस डिब्बी के अंदर गोली है कि नहीं है?
है तो सही, मगर उसकी
गोली है। तो है, लेकिन अब गोली रहे या नहीं रहे कोई फर्क पड़ेगा क्या? उसका होना नहीं होने जैसा ही है।
उसका जो फंक्शन था वो नहीं होता है, फंक्शन जो काम था वो नहीं कर पाए।
करेक्ट। सिमिलरली तो यहाँ पर जो पंडित दौलत राम जी लिख रहे हैं कि कर्मों का चले जाना, ऐसे कर्मों का चले जाना मतलब कर्म आत्मा से कहीं दूर गिर के चले जा, तो ये नहीं है। अभी वो मेरे साथ कर्म रूप में इस डिब्बी में रखे हुए थे वो टैबलेट, उनका काल था एक साल तक वो कर्म मेरे साथ रहेंगे, एक साल के बाद वो कर्म एक्सपायर हो गया। वो भले ही दही पर रखे रहे आत्मा में ही, लेकिन अब वो इफेक्ट ही नहीं देंगे तो मुझे उनके रहने नहीं रहने से क्या फर्क पड़ता है? बात आई समझ में? तो कर्म का ऐसा नहीं कि हमको उनको आत्मा से खींच कर निकाल कर कहीं फेंकना है, नो। कर्म का इफेक्ट जीरो होना चाहिए, कर्म एक्सपायर होना चाहिए, जिसको हम निर्जरा कहते हैं, अभिपाकी निर्जरा,
उदय होकर विपाक हो।
बट वेन विल दैट हैपन? जब आप कर्म की चिंता छोड़कर मोह राग द्वेष से भेद ज्ञान करना शुरू करोगे, यहाँ कंट्रोल लेकर आओगे तब। बात आई समझ में? ये निमित्त नैमित्तिक संबंध की बहुत बड़ी खिचड़ी है एक्चुअली, जिसका बहुत हमें बहुत स्वतंत्रता से उसको देखना सीखना पड़ेगा, तो लाइफ की 90% प्रॉब्लम तो यूं ही सॉल्व हो जाएंगी। आपको कभी मान नहीं छू पाएगा, आपको कभी क्रोध नहीं छू पाएगा, मायाचारी आप करना नहीं चाहोगे, लोभ का कोई आपको सेंस नहीं दिखेगा, जस्ट आप यदि निमित्त नैमित्तिक संबंध को समझ लो। तो ये इतना बड़ा वरदान है जैन धर्म का, गुरुदेव श्री का इतना बड़ा वरदान है, वो नहीं होते तो हमको वस्तु की स्वतंत्रता कौन बताता इतनी सूक्ष्मता से? क्या कि ये उंगली का एक रजगण उसी उंगली के बाजू वाले रजगण के उन दोनों के बीच में अत्यंत अभाव है, मतलब उनके पास में रहने वाले एक एक द्रव्य में इतनी स्वतंत्रता है, ये वाले गुरुदेव श्री खुद कहते थे ना, ये सिद्धांत निहाल कर देने वाले हैं, राइट। अकेली निमित्त निमित्त की हमको भासना हो जाए, उपादान उपादे तो फिर क्या ही करेगा, वो तो फिर प्रभुता को ही जगाने वाला है। बट आप जगत का कुछ, मैं जग का करता क्या काम, मैं कुछ नहीं करता जग का, पर का, किसी का भी, राइट। तो अभी हमने सिर्फ इतना बेसिक डिस्कशन किया कि जीव कर्म को नहीं करता, जीव अपने को करता है। लेकिन दिक्कत क्या है, जहां पर जीव अपने मोहराग्वेश करता है वहां पहले से ही कर्म का पानी इतना सारा है, तो जीव हाथ चलाएगा तो पानी अलग होगा ही, ऐसे ही वो कर्म रूप परिणमित होते हैं। सूरज किसी जीव को नहीं मार रहा है, लेकिन सूरज आएगा तो ये वाले जीव उसको सहन नहीं कर पाते, तो ये मरेंगे ही। अब इसमें सूरज का क्या दोष, सूरज तो अपना काम, ऐसी आत्मा कर्म का नहीं कर रहा, आत्मा अपना कर रहा है, अपने मोहराग्वेश, और इसलिए कर्म के कारण दुखी नहीं है, वो अपने मोहराग्वेश के कारण दुखी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट ये था कि फिर आत्मा कर्म के फल को तो भोगता है, तो भोगता क्यों है जब वो आत्मा अपने काम को करता है, जब वो कर्म को नहीं करता मोहराग्वेश को करता है, तो ऐसा क्यों बोलते रहे उनका बहुत पाप का उदय चल रहा है, कैसे कैसे उदय भोगने पड़ते हैं जीव को, कैसे कैसे दुख आते हैं जीव को। तो जब वो करता नहीं है कर्म का, तो कर्म के फल का भोगता आप कैसे कह सकते हो। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, कर्ता की बात तो समझ में आ गई आचार्य देव की, ठीक है, पहले से कर्म वहां था, जीव ने वहां राग्वेश किया तो वो अपने आप कर्म इधर उधर हो गया, ये समझ में आ गया, ठीक है। बट ठीक है, चलो मैंने जब कर्म नहीं बांधा आपकी बात के हिसाब से, वो अपने आप बन गया, तो मैं कर्म के फल को क्यों भोगूं। तब आचार्य देव वहां कहते हैं कि तुम वापस सोचो, क्या तुम सचमुच कर्म के फल को भोगते हो, तुम तो अपने सुख दुख के परिणाम को भोगते हो, क्योंकि एक सा कर्म का फल अलग अलग समय में तुम्हें अलग अलग अनुभूति देता है। जैसे कि आपके घर में लगातार एक हफ्ते तक आप दाल बाटी बनाइए, कुछ भी डिश बनाइए सेम, ठीक है, वॉट एवर यू लाइक, जो भी आपको अच्छा लगता हो, राइट। 7 दिन तक आप एक ही डिश बनाइए, तो 7 दिन तक आपको एक सा भोजन मिल रहा है, मतलब भोजन की अपेक्षा तो साता वेदनी में एक सा कर्म का उदय है, राइट, यस और नो।
एक साथ तो नहीं देता ना।
अरे लाइक इमेजिन कि हर दिन नमक ज्यादा कम नहीं हुआ, एकदम सेम टेस्ट की बनी हुई है 7 दिन तक।
हाँ,
सेम टेस्ट की बनी हुई है, ठीक है, एकदम डेकोरेशन भी वही, एकदम सेम दिखने में टिकटो, तो क्या 7 दिन आपको उस भोजन को करने में सेम मजा आएगा?
नहीं,
ये तो इकोनॉमिक्स भी मानती, इकोनॉमिक्स में इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इकोनॉमिक्स पढ़ी हो यहाँ पर, तो वो क्या बोलता है कि विद एवरी रसगुल्ला यू ईट योर प्लेजर डिक्लाइंस, आप पहला खाओगे तो आपको बहुत मजा आएगा, दूसरा खाओगे थोड़ा और आएगा, तीसरा और आएगा, फिर चौथे से वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, यार आप कितना खाएंगे। सिमिलरली तो आचार्य कुनकुन देव कहते हैं कि भैया तुम कह रहे हो कि कर्म के उदय को भोगते हो, लेकिन हम तो नहीं मानते इसको, तुम एक से कर्म के उदय में अलग अलग परिणाम करते हो, जैसे कि ठीक है मेरा बर्थडे था, फाइन, तो मेरा बर्थडे था तो मेरे मम्मी पापा ने सोचा कि वो मुझे सरप्राइज करेंगे, अब मैंने सरप्राइज के अलग ही सपने देख रखे कि मुझे इस बार सपने मतलब मम्मी पापा कार गिफ्ट करेंगे, ठीक है, आई एम वंडरिंग, एकदम सपने देख रहा हूँ पूरे साल से, इस बार तो अब मैं बड़ा हो गया, मेरे पापा कार गिफ्ट करेंगे, ठीक है, मम्मी पापा आए और मम्मी पापा सचमुच कार लेकर आए, बट वो रिमोट वाली कार थी, राइट, खिलौने वाली। सो नाउ यू टेल मी, मुझे जो कार मिली वो पुण्य के उदय में मिली के पाप के उदय में मिली?
पुण्य के उदय में मिली,
ऑब्वियसली जो कुछ भी मिला वो मिला ना, तो पुण्य के उदय था ना, राइट, लेकिन मैं सुखी हूँ कि दुखी हूँ?
दुखी हो,
अरे पुण्य का उदय है, साता वेदनी का उदय, कैसे दुखी हो सकता हूँ,
जो चाहता था वो नहीं मिला,
बाह्य सामग्री से सुख दुख का कुछ,
ठीक है,
क्योंकि कला थी ना,
કલાક થઈ ગયો એટલે પાણી લઈ લઈએ તો
કઈ ઢાળ લેતા હતા અત્યારે મોક્ષ ની?
એટલે દસમી શરૂ કરી છે.
દસમી માં પહોંચી ગયા?
હા, એટલે ત્રીજી ઢાળ માં દસમી, એટલે નવમી
ત્રીજી ઢાળ માં દસમી ગાથા. ઓકે, ઘણા વખત નથી પાછી આવતી.
મારું તપ પૂરું થઈ ગયું.
હેલો
હેલો,
અનુભવ જોવા દે.
हाँ सॉरी, सो बस ये कंक्लूजन ही था कि इसलिए जीव अपने सुख दुख के परिणाम को भोगता है. जब उसको वो गिफ्ट मिला, वो उसकी एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड नीचे था, तो उसको हमेशा दुख की अनुभूति हो गई. तो सुख दुख के परिणाम को भोगता है जीव, बाहर की वस्तुओं को नहीं भोगता. इस कारण से हम स्वयं के परिणाम को करते हैं और स्वयं के सुख दुख के परिणाम को भोगते हैं. ठीक है, फाइन. तो अब इसके बेस पर हम नेक्स्ट क्लास में मोक्ष तत्व पर अब चर्चा करेंगे कि मोक्ष का पर्सपेक्टिव क्या है और वो वास्तविकता क्या है. ठीक है, एनी क्वेश्चंस?
नहीं, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस.
फाइनल स्तुति करते हैं. निज निधि निज में बताई यह अनंत उकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार. नौ बाय नमकार.